एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर सभी का स्वागत। आज हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलटेंगे जो महज राजनीतिक या आर्थिक आजादी की बात नहीं करती।
हाँ, ये उससे कहीं गहरी बात है।
ये बात करती है मन की गहराइयों में बसी गुलामी की, उस मुक्ति की जो शायद सबसे अंदरूनी है और सबसे जरूरी भी।
और ये विषय तो ऐसा है जिसकी गूंज आज भी शायद पहले से ज्यादा सुनाई देती है ना?
बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं केनिया के मशहूर लेखक हैं नुगुई वाथ्योंगो। उनकी एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है डीकॉलोनाइजिंग द माइंड द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर।
हाँ, हिंदी में अगर कहें तो मन का वी उपनिवेशीकरण। अफ्रीकी साहित्य में भाषा की राजनीति, सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है ये।
हाँ, अकादमिक सा लगता है,
पर यकीन मानिए इसका जो सार है ना वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ा है।
बिल्कुल। आज की दुनिया देखिए ना कैसे सब जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी है, दूसरी ग्लोबल भाषाएं हैं, इनका दबदबा कितना बढ़ रहा है।
सही बात है।
तो ये किताब एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है, क्या हम सचमुच आजाद हैं? अगर हमारी सोच, हमारी कहानियां, हमारी पहचान जिस भाषा में हम ये सब करते हैं उस पर अब भी बाहरी असर हावी है। और ये सिर्फ अफ्रीका का सवाल नहीं है, ये हम सबके सोचने का मुद्दा है।
सही कहा। ये हमें अपनी जड़ों की तरफ देखने को कहती है, अपनी भाषाओं की ताकत को पहचानने को। तो चलिए इस विचार यात्रा पर निकलते हैं, समझते हैं कि नुगुगी हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ, लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले थोड़ा नुगुगी व थियोंगो को जानना जरूरी है ना?
हाँ बिल्कुल।
वो सिर्फ एक लेखक या प्रोफेसर नहीं है, उनकी जो अपनी जिंदगी है वो खुद इस किताब का एक तरह से कैनवस है।
उनका भोगा हुआ यथार्थ,
हाँ वही उनके शब्दों को वजन देता
है। उनका जन्म हुआ 1938 में, उस वक्त केन्या पर अंग्रेजों का राज था।
हाँ, औपनिवेशिक केन्या।
तो उन्होंने बचपन में ही वो दमन देखा, खासकर माऊ माऊ विद्रोह के दौरान जो अत्याचार हुए।
बहुत क्रूर दमन हुआ था उसका।
और सबसे अहम, उन्होंने महसूस किया कि कैसे उनकी अपनी भाषा किकुयू और उनकी संस्कृति को दबाया जा रहा है, कमतर बताया जा रहा है।
और सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये है कि उनकी शुरुआती पढ़ाई मिशन स्कूलों में हुई।
अच्छा।
और वहां अपनी मातृभाषा किकुयू बोलने पर सजा मिलती थी।
सोचिए जरा, अपनी माँ की जुबान बोलने पर पिटाई।
हाँ, बच्चों को। फिर बाद में वो युगांडा गए, मैकेरेरे यूनिवर्सिटी, फिर इंग्लैंड गए, लीड्स यूनिवर्सिटी।
तो मतलब उन्होंने अफ्रीकी और यूरोपीय दोनों दुनियाओं को, उनकी सोच को करीब से देखा।
बिल्कुल। और ये अनुभव उनके लेखन में एक अनोखा तनाव और गहराई लाता है।
और दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने लिखना शुरू किया अंग्रेजी में।
हाँ, शुरुआत में
वीप नॉट चाइल्ड जैसे उपन्यास लिखे, अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली उन्हें। लेकिन फिर 1977 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया।
बहुत बड़ा, क्रांतिकारी कह सकते हैं।
हाँ, उन्होंने कहा बस अब मैं अंग्रेजी में नहीं लिखूंगा, सिर्फ अपनी मातृभाषा किकुयू और स्वाहिली में।
ये कोई छोटी बात नहीं थी। सोचिए, कामयाब अंग्रेजी लेखक,
हाँ,
वो अपनी जड़ों की भाषा की तरफ लौट रहा है। हाँ। जहाँ शायद पाठक कम हो, पहचान शायद उतनी न मिले।
हिम्मत की बात है ये तो।
बहुत। इसीलिए जब वो भाषा और मानसिक गुलामी की बात करते हैं ना तो उसमें एक सच्चाई लगती है, एक ताकत महसूस होती है।
और उन्हें तो अपने विचारों के लिए, और एक किकियो नाटक था उनका, निंघाका निंदीना।
हाँ, उसके लिए जेल भी हुई थी
और देश निकाला भी झेलना पड़ा।
ये दिखाता है कि भाषा चुनना भी कितना राजनीतिक हो सकता है।
तो उनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, उनके पास संघर्ष का, जमीनी हकीकत का अनुभव है।
बिल्कुल। यही बात उन्हें इस विषय पर एक बेहद प्रामाणिक आवाज बनाती है।
तो आते हैं अब किताब पर। आखिर ये किताब है क्या चीज?
इसे आप गुगी का एक तरह का घोषणा पत्र कह सकते हैं।
अच्छा।
इसमें उनकी यादें भी हैं, निजी अनुभव है, और साथ में गहरा राजनीतिक विश्लेषण भी है।
तो ये अफ्रीका के लिए सिर्फ जमीनी आजादी की बात नहीं कर रही?
नहीं, ये सांस्कृतिक आजादी की वकालत करती है। और इसका जो मूल तर्क है ना वो दिमाग पर छप जाता है। गुगी कहते हैं कि उपनिवेशवाद का सबसे खतरनाक हथियार गोली या तोप नहीं था।
तो क्या था?
भाषा थी।
भाषा।
हाँ, जो कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम था उसने यूरोपीय भाषाओं को, उनकी संस्कृति को महान बताया।
हाँ, ये तो हुआ।
और अफ्रीकी भाषाओं को, वहां के ज्ञान को, कला को पिछड़ा कह दिया, जंगली, गैर जरूरी करार दे दिया। ये एक तरह का कल्चरल बॉम्ब था, एक सांस्कृतिक बम।
कल्चरल बॉम्ब, ये क्या करता था?
ये लोगों के मन में अपनी ही पहचान को लेकर एक हीन भावना भर देता था।
अच्छा।
लोगों का अपनी भाषा पर से, अपने इतिहास, अपने नायकों यहाँ तक कि अपने नामों पर से विश्वास डिगा देता था।
नुंगी वो अपने बचपन के अनुभव बताते हैं इसमें, कैसे स्कूल में अपनी भाषा बोलने पर बेइज्जती होती थी।
हाँ, और ये कोई एकाध घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी नीति थी,
ताकि एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो
जो मानसिक रूप से अपने शासकों पर निर्भर रहे, उनकी नकल करे।
और सोचने वाली बात यह है कि नुंगियो कहते हैं यह सिलसिला आजादी के बाद भी रुका नहीं।
नहीं रुका, कई नए आजाद हुए अफ्रीकी देशों ने भी क्या किया, शिक्षा में, राजकाज में उन्हीं यूरोपीय भाषाओं को बनाए रखा।
हाँ, कभी कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है, कभी कहा कि आधुनिकता के लिए।
बिल्कुल, लेकिन नतीजा क्या हुआ, वो जो मानसिक गुलामी थी वो बनी रहे। जब आप सोचते ही उस भाषा में हैं, सपने भी उसी में देखते हैं, रचते भी उसी में हैं जो कभी आप पर थोपी गई थी,
तो कहीं ना कहीं आप दुनिया को भी उसी नजरिए से देखने लगते हैं।
हाँ, इसीलिए इन गुगी कहते हैं कि सच्ची आजादी के लिए सिर्फ झंडा बदल लेना काफी नहीं है,
चेतना के स्तर पर बदलाव चाहिए, सोच के स्तर पर।
बिल्कुल, इसी को वो कहते हैं मन का विउपनिवेशीकरण।
और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी?
अपनी भाषाओं को, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से अपनाने से, उन्हें सम्मान देने से। ये एक तरह से आत्मसम्मान की लड़ाई है।
चलिए अब किताब के कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। पहला अध्याय है अफ्रीकी साहित्य की भाषा।
हाँ,
यहाँ नगुगी एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं और कुछ हद तक विवादास्पद भी।
क्या सवाल है?
वो पूछते हैं कि क्या अफ्रीकी लेखकों द्वारा यूरोपीय भाषाओं में, मतलब अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, इनमें लिखा गया साहित्य सचमुच अफ्रीकी साहित्य कहला सकता है?
ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है वाकई। उनका तर्क ये है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं है।
नहीं,
वो पूरी संस्कृति, इतिहास, दर्शन, दुनिया देखने का नजरिया, सब कुछ अपने अंदर समेटे होती है।
सही बात है।
तो जब कोई अफ्रीकी लेखक यूरोपीय भाषा में लिखता है, चाहे वो अफ्रीकी जीवन के बारे में ही क्यों न लिख रहा हो, उसे कहीं ना कहीं उस यूरोपीय भाषा के ढांचे में, उसकी परंपराओं के भीतर सोचना पड़ता है।
तो क्या वो साहित्य अफ्रीकी रहता है या फिर वो यूरोपीय परंपरा का ही हिस्सा बन जाता है?
यही सवाल वो उठाते हैं और यहीं पर वो अपनी वो मशहूर घोषणा करते हैं
कि वो अब अंग्रेजी में रचनात्मक लेखन नहीं करेंगे।
हाँ, और ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, ये गहरा राजनीतिक और सांस्कृतिक स्टैंड है।
और यही वो कल्चरल बॉम्ब की बात फिर से करते हैं, कैसे उपनिवेशवाद ने लोगों की आत्मा पर हमला किया, उनके आत्मविश्वास को तोड़ा।
पर क्या ये सिर्फ लिखने वालों का मामला है या पढ़ने वालों पर भी इसका असर होता है?
यकीनन पढ़ने वालों पर भी उतना ही असर होता है। जब शिक्षा और साहित्य सिर्फ विदेशी भाषा में मिलेगा,
हाँ,
तो आम लोग जो उस भाषा को नहीं जानते, वो अपनी ही संस्कृति की गहरी समझ से, उसकी अभिव्यक्ति से कट जाते हैं।
ज्ञान कुछ खास लोगों तक सिमट कर रह जाता है।
बिल्कुल।
अच्छा, अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, अफ्रीकी रंगमंच की भाषा।
हाँ, थिएटर की बात।
यहाँ अंगुगी अपने एक कमाल के प्रयोग का जिक्र करते हैं, कामेरिथू कम्युनिटी एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर का।
कामेरिथू?
हाँ, उन्होंने अपने गांव के पास आम किसानों और मजदूरों के साथ मिलकर,
अच्छा,
उनकी अपनी भाषा किकुयू में एक नाटक तैयार किया, नगाही का निंदारा।
मतलब जब चाहूंगा तब शादी करूंगा।
हाँ, नंगुगी बताते हैं कि जब ये नाटक हुआ तो उसका असर जैसे बिजली दौड़ गई हो। गांव के लोग जो आमतौर पर सिर्फ दर्शक होते थे,
वो
खुद कलाकार बन गए। हाँ, अपनी कहानी अपनी भाषा में कहते हुए उनमें एक नई चेतना जागी, एक नया आत्मविश्वास आया। ऐसा लगा जैसे पूरा समुदाय जी उठा हो।
ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर अपनी भाषा में बात करना, अपनी कहानी कहना, ये कितना शक्तिशाली हो सकता है।
बिल्कुल। इसकी तुलना अगर हम अंग्रेजी में होने वाले नाटकों से करें, जो अक्सर शहरों तक, पढ़े लिखे वर्ग तक ही सीमित रहते हैं।
हाँ, तो फर्क साफ दिखता है।
कामेरिथू का अनुभव ये बताता है कि भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है, वो समुदाय को जोड़ने का, उन्हें सशक्त करने का औजार भी है।
और इस प्रयोग का नतीजा क्या हुआ?
नतीजा ये हुआ कि नाटक इतना लोकप्रिय हुआ और उसका संदेश इतना तीखा था कि उस वक्त की केन्याई सरकार घबरा गई।
अच्छा।
उन्होंने नाटक बंद करवा दिया और गुगी को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया।
अरे,
ये घटना दिखाती है कि भाषा का चुनाव कितना ज्यादा राजनीतिक हो सकता है। ये सिर्फ कला की बात नहीं थी, ये सत्ता के लिए सीधी चुनौती बन गई थी।
अब बात करते हैं तीसरे अध्याय की, भाषा की राजनीति, या कहें अफ्रीकी कथा साहित्य की भाषा। यहाँ अंगू की भाषा नीति का जो राजनीतिक खेल है, उसे और खोलकर रखते हैं। कैसे औपनिवेशिक ताकतों ने जानबूझकर स्थानीय भाषाओं को दबाया,
स्कूलों से बाहर किया,
हाँ, और अपनी भाषा को तरक्की की, ज्ञान की भाषा बनाकर पेश किया। ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार था।
बिल्कुल, और जैसा हमने पहले कहा, ये खेल आजादी के बाद भी जारी रहा।
हाँ, कई अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय एकता के नाम पर या दुनिया से जुड़ने के नाम पर यूरोपीय भाषाओं का दबदबा बना रहा।
और इसका नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हुआ जो शायद अपनी जमीन की सच्चाइयों से उतना नहीं जुड़ा था
जितना पश्चिमी विचारों से।
हाँ, फिर न्गुगी अफ्रीकी उपन्यास पर आते हैं। वो चिनुआ अचेबे या वोले सोयिंका जैसे लेखकों का बहुत सम्मान करते हैं जिन्होंने अंग्रेजी में अफ्रीकी अनुभव को बड़ी खूबसूरती से लिखा।
हाँ, उनका काम तो शानदार है।
बिल्कुल, लेकिन न्गुगी इसे एक विरोधाभास भी मानते हैं।
विरोधाभास कैसे?
वो कहते हैं कि ये जो एफ्रो यूरोपियन साहित्य है ये अक्सर आम लोगों के लिए नहीं लिखा जाता।
तो किसके लिए लिखा जाता है?
ये अक्सर पश्चिमी पाठकों के लिए या फिर अपने ही देश के उस पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग के लिए होता है।
अच्छा,
तो लेखक एक तरह से क्या बन जाता है? अपनी संस्कृति का अनुवादक,
ट्रांसलेटर।
हाँ, वो बाहरी दुनिया को अपनी संस्कृति समझा रहा होता है
right.
बजाय इसके कि वो अपनी संस्कृति के भीतर से अपने लोगों के लिए बात करे।
तो ज्ञान भी एक तरह की एक्सपोर्ट कमोडिटी बन जाता है।
बिल्कुल सही कहा।
और आखिरी अध्याय है प्रासंगिकता की खोज।
हाँ, द क्वेस्ट फॉर रेलेवेंस।
ये शिक्षा के मकसद पर ही सवाल उठाता है कि अफ्रीकी विकास के लिए कैसी शिक्षा जरूरी है, कैसी शिक्षा प्रासंगिक है।
और न्गुगी का तर्क यहाँ बहुत साफ है। वो कहते हैं कि उपनिवेशवाद से जो शिक्षा प्रणाली हमें विरासत में मिली है
हाँ,
वो असल में अफ्रीकी तरक्की के रास्ते में एक रोड़ा है।
रोड़ा क्यों?
क्योंकि वो ऐसे ग्रेजुएट तैयार करती है जो अपनी समस्याओं के हल के लिए भी पश्चिम की ओर देखते हैं,
अपनी जड़ों में समाधान नहीं तलाशते।
हाँ, ये बात सिर्फ अफ्रीका की नहीं लगती है ना?
बिल्कुल नहीं, कई विकासशील देशों में शिक्षा की प्रासंगिकता पर यही बहस चलती है। भारत में भी हम नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर जोर देने की बात कर रहे हैं।
हाँ, ताकि बच्चे अपनी जमीन से जुड़कर सोच सकें।
मुंगुगी ऐसी ही शिक्षा सुधार की वकालत करते हैं जहां अफ्रीकी भाषाएं, संस्कृतियां और ज्ञान परंपराएं वो केंद्र में हों, हाशिए पर नहीं।
उनका मानना है कि ऐसी शिक्षा से ही ऐसे लोग तैयार होंगे जो न सिर्फ आधुनिक ज्ञान में माहिर हों
बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों में भी मजबूत हों।
हाँ, और ऐसे लोग ही अपनी चुनौतियों के असली जमीनी समाधान निकाल पाएंगे।
ये अध्याय एक तरह का आह्वान है कि बुद्धिजीवी और कलाकार अपने काम को आम लोगों के संघर्षों से जोड़ें।
बिल्कुल, और अपनी भाषा में लिखना कोई पिछड़ापन नहीं है बल्कि सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता की पहली सीढ़ी है।
मतलब जब आप अपनी जमीन पर मजबूत होते हैं तभी दुनिया से बराबरी का संवाद कर सकते हैं।
सही बात।
इस पूरी चर्चा से जो कुछ बेहद जरूरी बातें उभर कर आई हैं उन्हें अगर समेटना चाहें तो पहली और सबसे बुनियादी बात शायद यह है, भाषा महज शब्द नहीं, संस्कृति की आत्मा है।
बिल्कुल, हमारे मूल्य, इतिहास, दुनिया देखने का नजरिया सब भाषा में सांस लेते हैं। भाषा बदलना सिर्फ जुबान बदलना नहीं है, वो सोच का ढांचा बदलना है।
दूसरी बात जो कलेजे पर लगती है, औपनिवेशिक शिक्षा ने एक तरह की सांस्कृतिक हिंसा का काम किया।
हाँ, अपनी भाषा बोलने पर बच्चों को शर्मिंदा करना, मारना, ये उनकी जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा था। यही न्गुगी का कल्चरल बॉम्ब है
जो आत्मविश्वास और पहचान को मलबे में बदल देता है। तीसरा सबक, मानसिक गुलामी का खतरा। ये राजनीतिक आजादी के बाद भी बना रहता है। अगर हम अपनी चीजों को कमतर और बाहरी चीजों को बेहतर मानते रहेंगे तो हम कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। समाधान हमेशा बाहर से ही मंगाना चाहेंगे।
चौथा बिंदु ज्ञान और सत्ता के रिश्ते पर है। ज्ञान किसके लिए और किस भाषा में पैदा हो रहा है ये बहुत मायने रखता है।
हाँ, जब शोध और लेखन विदेशी भाषाओं में होता है तो वो अक्सर स्थानीय जरूरतों से कट जाता है, एक ग्लोबल मार्केट का माल बन जाता है।
बिल्कुल, और पांचवा, एक उम्मीद जगाने वाला संदेश, अपनी भाषाओं में लौटना सिर्फ अतीत को सहेजना नहीं है, ये भविष्य के लिए नए रास्ते खोलना है।
स्वदेशी भाषाओं में सोचने की, रचने की, संवाद करने की एक क्रांतिकारी क्षमता है।
ये मुक्ति का औजार बन सकती है। भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए ये सारी बातें कितनी कितनी प्रासंगिक लगती हैं, है ना?
बहुत ज्यादा।
किताब में कई पंक्तियां तो ऐसी हैं जो सीधे दिलो दिमाग पर असर करती हैं। कुछ ऐसे विचारों को उनके ही अंदाज में देखें जरा।
हाँ, देखते हैं। पहला, भाषा संस्कृति को वहन करती है और संस्कृति मूल्यों के पूरे समूह को वहन करती है जिसके द्वारा हम खुद को और दुनिया में अपनी जगह को समझते हैं।
कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है। हमारी पहचान, हमारा आत्मबोध भाषा से कैसे गुंथा हुआ है।
दूसरा, उपनिवेशवाद का असली उद्देश्य अफ्रीकी की संपत्ति को नियंत्रित करना था। इसके लिए जरूरी था वास्तविक जीवन की भाषा के पूरे दायरे को नियंत्रित करना।
ये दिलचस्प है। मतलब आर्थिक लूट करनी है तो पहले लोगों की सोच और उनकी भाषा पे कब्जा करो।
दिमाग पर कब्जा जमीन पर कब्जे से ज्यादा टिकाऊ होता है।
बिल्कुल।
तीसरा, गोली शारीरिक अधीनता का साधन थी, भाषा आध्यात्मिक अधीनता का साधन थी।
रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर।
शारीरिक जख्म शायद भर भी जाएं, पर भाषा के जरिए आत्मा पर जो चोट की गई
उसका असर पीढ़ियों तक रहता है।
चौथा, बर्लिन 1884, जब यूरोप ने अफ्रीका का नक्शा बांटा था, का असर 1984 में अफ्रीकी बच्चे की भाषाओं में दिखाई दे रहा था।
ये उपनिवेशवाद के कितने लंबे असर को दिखाता है। 100 साल बाद भी नीतियां वही मानसिकता ढोरी थी।
इतिहास का बोझ हमारी जबान पर कितना भारी हो सकता है।
और अंत में गूंगी का अपना संकल्प, जो इस किताब का मकसद भी है शायद।
वो कहते हैं, ये किताब अंग्रेजी को मेरे किसी भी लेखन के वाहन के रूप में मेरी विदाई है। अब से पूरी तरह से गीक्यू और किस्वाहिली होगी।
और ये सिर्फ कहानी उन्होंने किया भी, ये उनके विचारों की ताकत है, उनके साहस का सबूत है।
तो सवाल ये उठता है कि इन गहरे विचारों का हमारी अपनी जिंदगी में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या हम इन्हें कहीं इस्तेमाल भी कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। शिक्षा को ही लीजिए।
हाँ,
ये किताब जोर देती है कि बच्चों की शुरुआती पढ़ाई उनकी अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए।
हाँ, ये बात तो काफी उठ रही है।
क्योंकि जब बच्चे अपनी भाषा में सीखते हैं तो वो ज्यादा सहज महसूस करते हैं, बेहतर समझते हैं, उनकी सोचने की क्षमता का विकास भी ज्यादा स्वाभाविक होता है।
बाकी भाषाएं बाद में सीखी जा सकती हैं, पर बुनियाद अपनी भाषा में हो।
बिल्कुल। भारत में भी नई शिक्षा नीति इसी दिशा में एक कदम है।
सांस्कृतिक तौर पर देखें
तो ये हमें अपनी भाषाओं में लिखे जा रहे साहित्य, बन रही फिल्मों, संगीत, कला, इन सबको ज्यादा महत्व देने के लिए प्रेरित करता है।
अक्सर हम मान लेते हैं कि बढ़िया काम या गंभीर काम तो अंग्रेजी में या किसी बड़ी भाषा में ही होता होगा।
हाँ, ये सोच बदलने की जरूरत है। अपनी भाषाओं में भी कमाल की रचनाएं हो रही हैं। उन्हें खोजना, उन्हें सराहना जरूरी है।
और व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनल लेवल पर,
हम अपनी मातृभाषा या परिवार की जो भाषा है उसे और बेहतर सीख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं,
भले ही रोजमर्रा के काम में कोई और भाषा ज्यादा चलती हो।
हाँ, ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल का मामला नहीं है, ये अपनी पहचान के एक अहम हिस्से से जुड़ने जैसा है।
ये सोचना भी दिलचस्प है कि हम जो भाषा बोलते हैं वो हमारी सोच को, हमारे नजरिए को कैसे शक्ल देती है।
बिल्कुल। और बड़े पैमाने पर देखें, समाज और विकास के नजरिए से,
हाँ,
तो बाहर से लाए गए मॉडल अक्सर फेल हो जाते हैं।
क्यों?
क्योंकि वो हमारी जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते।
सही बात है।
जब नीतियां और योजनाएं स्थानीय भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखकर बनती हैं, लोगों की भागीदारी से बनती हैं, तो वो ज्यादा कामयाब होती हैं, ज्यादा टिकाऊ होती हैं।
मीडिया में भी स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल लोगों तक पहुंचने का, उन्हें ताकत देने का एक बड़ा जरिया हो सकता है।
हाँ,
इस पूरी बातचीत के बाद मुझे जो सबसे बड़ी बात समझ आई वो ये है कि असली आजादी वो सिर्फ झंडा फहराने या वोट डालने तक सीमित नहीं है।
नहीं,
असली आजादी मन की आजादी है, सांस्कृतिक आजादी है, और इस लड़ाई में भाषा वो हमारा सबसे मजबूत हथियार भी है और सबसे संवेदनशील मोर्चा भी।
मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी पहचान, इनको मान देना कोई भावुकता या दकियानोसी बात नहीं है। ये किसी भी समाज के आत्मविश्वास की, उसकी तरक्की की, उसकी सच्ची आजादी की बुनियाद है।
विविधता बोझ नहीं, ताकत है।
बिल्कुल, जिसे हमें न सिर्फ बचाना है बल्कि उसे और सींचना है।
हाँ, ये किताब हमें एक आईना दिखाती है, हमें चुनौती देती है कि हम अपनी भाषाओं और संस्कृतियों को हीन भावना से देखना बंद करें
और उनमें छिपी संभावनाओं को पहचानें।
ये सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि सोचने और शायद बदलने की दावत है।
क्या हम अपनी भाषा को वो सम्मान दे रहे हैं जिसकी वो हकदार है?
हाँ, ये सवाल हमारे साथ रह जाता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।